मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 19 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आप सबसे कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में कुछ मूलभूत बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले आइए हम कुछ दूसरी जरूरी खबरों को देख लेते हैं। आज के अखबार में आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शायद पढ़ी हो, या हो सकता है कि वो छूट भी गई हो। महत्वपूर्ण, तो जब मैं महत्वपूर्ण कहता हूं तो देखिए वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ही होती है ना, अदरवाइज हो सकता है कि वो दूसरों के लिए महत्वहीन हो। और ये जो महत्वपूर्ण खबर है मित्रों, वो ये है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से निर्भया के मामले को लेकर के और अभी हैदराबाद में जो दुष्कर्म का मामला हुआ उसको लेकर के पूरी जनता में एक जबरदस्त किस्म का रोष है, आक्रोश है। और यह आक्रोश इस बात को लेकर के है, इनफैक्ट आप जरा भी गहराई में जाकर सोचेंगे तो आपको बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा कि न्याय में इतनी देरी क्यों होती है। 2012 दिसंबर की घटना है निर्भया का और अभी तक वो मामला चल रहा है, देख रहे हैं आप, और हम 2019 के दिसंबर में एंटर कर चुके हैं। क्यों इसमें इतनी देरियां हो रही हैं? और यही कारण है कि जब हैदराबाद में मुठभेड़ में वो दुष्कर्म के जो आरोपी थे वो मारे गए, तो किसी को, ज्यादातर लोगों को आप कह लीजिए कि अफसोस नहीं हुआ, बल्कि सभी ने उसका समर्थन किया। तो आप सोच करके देखिए कि समाज की चेतना धीरे धीरे किधर चलती चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये विधि के शासन की बात तो नहीं हुई। तो ये जो पूरा का पूरा आक्रोश है, ये इस बात को लेकर के है कि न्याय व्यवस्था में इतनी देरी क्यों लगती है, और वो बहुत भयानक रूप से देरी लगती है। और शुरू से कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर न्याय मिलने में देरी हो रही है तो यह एक प्रकार से न्याय न मिलने के जैसा ही है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसका संज्ञान लिया। देखिए, संज्ञान का मतलब है कोर्ट में क्या होता है कि जब कोई मामला लेकर के जाता है तो कोर्ट उस पर विचार करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब यह अधिकार है कि वो किसी मामले पर जो उसे सार्वजनिक हित का दिखाई दे रहा है, खुद भी वो आप कह लीजिए कि अपने ही यहां दायर कर सकता है, पूछ सकता है कि ये क्यों हो रहा है, जिसे हम कहते हैं संज्ञान। और इसमें इसने जो कोर्ट में इस खासकर दुष्कर्म के मामलों को लेकर के जो देरी हो रही है इसके बारे में इन्होंने अब कदम उठाए हैं। और बकायदे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की इससे जुड़ी हुई जो बेंच है उसने एक नोटिस जारी किया है, और ये नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार के लिए भी, राज्य सरकारों के लिए भी, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए भी, और सभी हाई कोर्ट्स के लिए। और उसमें वो जानना चाह रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि आप बताइए कि जो दुष्कर्म हत्या के जो मामले होते हैं इनमें वर्षों तक फैसला नहीं हो पाता, तो ऐसा क्यों, मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो बाधा बनती हैं फैसले में। हो सकता है कि पुलिस सहयोग न कर रही हो, या आपके वकील सहयोग न कर रहे हो, बहुत से मामले हो सकते हैं। तो जो सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने जमीनी हालात जानने चाहे, प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप जानते हैं तभी उसके आप सही तरीके के समाधान भी निकाल सकते हैं। यहां मैं आपको एक डेटा देना चाहूंगा और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस डेटा को नोट कर लें, क्योंकि ये मामला धीरे धीरे बहुत ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। और ये डेटा है, आप देखिए कि 2017 में देश भर में दुष्कर्म के 32,559 केस हुए हैं। कल्पना करके देखिए, 32,559, एक साल में 365 दिन में 32,000, सोच करके देखिए रूह कांप जाएगी। और इसके बाद उनमें इतनी देरी हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कदम उठाया है ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ये आपके जहन में होना चाहिए ताकि आप अपने उत्तर में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें शामिल कर सकें। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन भी दिया है। सजेशन उसने ये दिया है कि जैसे कि कोई मामला ऐसा चल रहा है जिसमें कि फांसी की सजा दी जा सकती है या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, तो जो हमारे यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण है उसकी तरफ से सेवाएं वकील उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो अधिवक्ता होते हैं वो थोड़े अनुभवी हों और कम से कम उनके पास 10 साल का अनुभव तो हो ही। जनरली होता क्या है कि ये जो प्राधिकरण है ये 1-2 साल के नए लोगों को अपना अधिवक्ता को लगा देते हैं तो वो मामले को समझ नहीं पाते हैं तो देरी हो जाती है। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अगर अपील से संबंधित मामला है तो वहां तो बकायदे वरिष्ठ अधिवक्ता जो होते हैं, जो सीनियर जो वकील होते हैं, उनकी सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो चूंकि ये अनुभवी होंगे तो हो सकता है कि मामले को जल्दी निपटाने में ये मदद कर सकें। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसे नोट कर लें। दूसरी जो खबर है वो ये है कि अभी भारत सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन। इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है थोड़ा सा आप उन्हें देख लें कि 2022 तक, इसका जो मकसद है कि 2022 तक हमारे जितने भी गांव हैं वो ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएंगे। अभी हमारे पास 22 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, जिसे बढ़ा करके 50 लाख किलोमीटर कर दिया जाएगा, और यहां तक कि जो टेलीकॉम के जो हमारे टावर हैं 5,65,000 हैं, उसे भी बढ़ाकर लगभग 10 लाख कर दिया जाएगा, और हमारे सारे जो गांव हैं वो ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएंगे। ये इसका मतलब मेन लक्ष्य है, जो बहुत बड़ी बात होगी। और बकायदे मिनिस्टर साहब ने फिर कहा है कि इस मिशन का उद्देश्य क्या, विजन क्या है, तो उसके तहत है कि इससे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसका बहुत तेजी से विकास किया जाएगा। हमारे देश में जो डिजिटल अंतर है वो अंतर समाप्त होगा, जैसे गांव में सुविधा नहीं है शहरों में सुविधाएं हैं, तो उस अंतर को समाप्त किया जाएगा, लोगों को डिजिटली एम्पावर्ड किया जाएगा, और साथ ही साथ जो समावेशी विकास होता है उसके लिए इसकी जो सेवाएं हैं हमारे नागरिकों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि जो हमारा विकास है वो समावेशी तरीके से हो सके। तो मित्रों ये भी खबर मुझे लगता है कि प्री और मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट खबर है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं फिलहाल इम्पीचमेंट महाभियोग का सामना कर रहे हैं, मैं तो देखते हैं कि वो खबरें किस तरह से आगे बढ़ती हैं, फिर जैसी भी स्थिति होगी उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। न्यूज़ में आपने सुना साहित्य एकेडमी पुरस्कार, हालांकि सिविल सर्विस में तो अभी पुरस्कारों के बारे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको ध्यान में रखते हुए दो पुरस्कारों की मैं खासकर चर्चा करूंगा। शशि थरूर जी को अंग्रेजी का दिया गया है और नंदकिशोर आचार्य जो हैं उन्हें हिंदी का साहित्य एकेडमी का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वह है कॉरपोरेट गवर्नेंस। ये आपके जनरल स्टडीज का जो थर्ड पेपर है मेंस का, और यहां तक कि फोर्थ पेपर में भी कभी कभी इस पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और इस पर प्रश्न पूछे गए हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस। दरअसल इस विषय को मैंने इसलिए लिया है कि कल जो हमारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, याद रखिए अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना, ये सीधे सीधे ट्रिब्यूनल नहीं है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसने एक फैसला दिया। और फैसला जो टाटा सन्स जो कंपनी है टाटा सन्स उसके चेयरमैन के रूप में था, पहले ये जो मिस्टर मिस्त्री थे जिनका पूरा नाम है साइरस मिस्त्री, ये टाटा एंड सन्स के चेयरमैन थे, और चेयरमैन के पद से इन्हें हटा दिया गया था। उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स थे उनमें से ज़्यादातर ने इनके ऊपर आरोप लगाया, और आरोप ये लगाया कि ये इनका अब यानी कि बोर्ड का और जो हमारे शेयर धारक हैं उनका अब मिस्त्री साइरस मिस्त्री पर भरोसा नहीं रह गया, उनको हटा दिया गया। इसके बाद अब जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसने ये निर्णय दिया है कि नहीं, इन्हें गलत तरीके से हटाया गया था, इन्हें फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया जाए। ये बात, ये घटना घटित हुई है। तो ये जो घटना है कहीं ना कहीं सिविल सर्विस के हमारे सिलेबस का जो गुड गवर्नेंस का जो चैप्टर है टॉपिक है उससे जुड़ जाता है, और चूंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मुझे लगा कि इधर मुझे अपने स्टूडेंट्स का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हो सकता है कि ये स्टूडेंट इससे इस टॉपिक को न निकाल पाए कि गुड गवर्नेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो दोस्तों ये गुड गवर्नेंस क्या है, आइए बहुत थोड़े समय हम लोग समझ लेते हैं। गुड गवर्नेंस, लेकिन ये कॉरपोरेट गुड गवर्नेंस, सामान्य तौर पर आप गुड गवर्नेंस जानते हैं सुशासन। सुशासन में क्या होना चाहिए, अब बता, शासन तो हो रहा है लेकिन सुशासन का मतलब है अच्छा शासन। तो अच्छा शासन इसी तरह से हो कि जहां ट्रांसपेरेंसी हो, चीजें बहुत ही पारदर्शी तरीके से हो रही हो, जहां बकायदे अकाउंटेबिलिटी हो, यानी कि जो अधिकारी गण हैं वो अपने उत्तरदायित्व को समझें, जहां सुरक्षा हो, इन सब को ही हम सुशासन के तत्व मानते हैं। और भी हैं लेकिन मैं यहां बहुत ही सामान्य तरीके से आपके सामने ये बात रख रहा हूं। तो अब ये जो सुशासन है, जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, इसको अब आप कॉरपोरेट सेक्टर पर लागू कर दीजिए। जब हम कॉरपोरेट करते कहते हैं तो उसका मतलब है, समझ लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां, सामान्य रूप में आप कह सकते हैं व्यापार की नैतिकता। लेकिन ये व्यापार की नैतिकता शब्द इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, कॉरपोरेट एथिक्स आप कह सकते हैं। कॉरपोरेट के भी अपनी एथिक्स होते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, लेकिन उसकी भी अपनी नैतिकता होती है। अगर ये जो कॉरपोरेट हैं अपनी नैतिकता के हिसाब से काम करने लगे तो सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि ये कॉरपोरेट का जो गुड गवर्नेंस होता है, कॉरपोरेट गवर्नेंस ही कह लीजिए, उसका प्रमाण है, उसका प्रतीक है। जब हम कहते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस या कॉरपोरेट गुड गवर्नेंस, तो देखिए उसके भी तीन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माने गए हैं और ये हमारे सीधे सीधे सुशासन के स्तंभों से जुड़ जाते हैं। ये उससे अलग नहीं है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत कीजिएगा अपने आप को, बहुत ज्यादा तनाव भी मत लीजिए। जो हमारा सुशासन है उस सुशासन को आप कॉरपोरेट का जो एक सिस्टम है, जो ढांचा है, उस ढांचे पर अप्लाई कर दीजिए, आप कॉरपोरेट गवर्नेंस को समझ जाएंगे। इसके तीन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माने गए, एक ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो भी चीजें हों वो बहुत ही पारदर्शी हों, स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जितने भी वहां काम करने वाले लोग हैं वो सब अपने दायित्व को बहुत अच्छे तरीके से समझें और अगर कुछ गलती होती है तो उसे स्वीकार करें, उसकी जिम्मेदारी लें। और इसके बाद है सिक्योरिटी। यहां देखिए जैसे हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वह सिक्योरिटी शारीरिक सिक्योरिटी नहीं है, वो आर्थिक सिक्योरिटी है। दोनों तरह से, जैसे वहां लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हैं, तो उनकी सुरक्षा, और दूसरा ये कि जो शेयर होल्डर हैं उस कंपनी में, उनकी आर्थिक सुरक्षा, कि उनका पैसा सुरक्षित रहे। तो इस हिसाब से आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। ये प्रणाली किस तरह की है, क्या करती है? इस प्रणाली का काम है कि यह जो वहां का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या जो कंपनी में काम करने के जो तौर तरीके हैं उन्हें निर्देशित करे और उन्हें नियंत्रित भी करे, दोनों काम करे। आपको ऐसे ऐसे काम करना है यह बताए, और अगर वो वैसे वैसे काम न करके कुछ गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो उन्हें बकायदे कंट्रोल भी करे, राइट? तो अब ये देखिए कि जो बात मैंने कहा, डायरेक्शन दे और बकायदे कंट्रोल करे, तो ये किनको करेगी? कंपनी एज ए होल हो गया। तो अब कंपनी में कौन कौन से तत्व होते हैं, उन सभी को आपको अपने दिमाग में लेकर के आना होगा। और यहां जो मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि जो कंपनी का, किसी भी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, याद होगा कि मैंने उसकी बहुत विस्तार के साथ आपको आपसे चर्चा की थी, जिसमें मैंने बताया था कि एक ऊपर MD होते हैं, इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सारे निर्णय लेता है। इसके बाद जो कंपनी के अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें से किसी न किसी ब्रांच को संभाल रहे होते हैं। तो जो मेन कह लीजिए कि सरकार में जो स्थान कैबिनेट का होता है, लगभग लगभग वही स्थान किसी भी कॉरपोरेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। तो जो सबसे ज्यादा जो गुड ऑफ गवर्नेंस के जो डायरेक्शंस होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, वो लागू होते हैं इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। और अगर ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि इस कॉरपोरेशन में, इस कॉरपोरेट का जो गवर्नेंस है वो गुड है, बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। तो मित्रों, समय की सीमा को देखते हुए अब इस पर बहुत ज्यादा विस्तार से बात करना संभव नहीं है, तो इसे मैं अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, समीक्षा सोनी, अभिषेक रंजन रांची झारखंड से, चिराग ताम्रकर भोपाल से, सुषमा डॉली, अंशिता मेघराजानी, उर्मिला धाकड़, आयुषी अग्रवाल और भूपेंद्र पाटीदार, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।